रूस यूक्रेन के बीच जारी विवाद के निपटारे के लिए भारत ने कूटनीतिक रास्ता अपनाए जाने की वकालत की है। भारत ने उम्मीद जताई है कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर भारत का पक्ष रखते हुए कहते हैं,
भारत यही चाहता है कि किसी तरीके से शांति स्थापित हो और बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाए, यह भारत चाहता है। आश्वस्त हूं कि कोई न कोई समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। भारत का जहां तक पक्ष है, भारत शांति चाहता है, भारत सदैव से विश्व शांति का पक्ष धर रहा है।
यूक्रेन संकट पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मीडिया से बातचीत करते हुए भारत की प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
वी हैव बीन वेरी क्लियर दैट देयर शुड बी डी एस्केलेशन ऑफ टेंशंस, दैट द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड अनदर कॉन्फ्लिक्ट, दैट डिप्लोमेसी एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आर द ओनली वे in order to reach an amicable solution that is acceptable to all. And I think this has been our consistent approach to this issue. We have been in touch with all concerned. Our minister, External Affairs Minister, was in Europe at the Munich Security Conference. He has met a lot of our interlocutors. And I think our approach has always been that please de-escalate, please de-conflict, and most important of all, diplomacy is the only option, and we don't want to see anything that results in any further escalation of the situation.
यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया ने अपनी उड़ान सेवा शुरू कर दी है। मंगलवार को पहले जत्थे में लगभग 240 लोगों को भारत लाया गया। रूस यूक्रेन संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ने वाला है। विवाद के लंबा खींचने पर महंगाई के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम लगभग $96 प्रति बैरल जा पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे एक चुनौती बताते हुए कहती हैं।
See, on the crude prices, very difficult to say as to how it's going to go. Even today in the FSTC, when we were looking at the challenges which is posed for the financial stability, crude was one of the things. International worrisome situations where we actually voiced that we want a diplomatic solution for the situation that is developing in Ukraine. All these are headwinds. On the crude, obviously, is one of the very important consideration. We'll have to see how it goes. Today itself, the rate is somewhere in the range of 96 Brent. So we'll keep a watch.
भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो सकती है। निर्मला सीतारमण इस बारे में कहती हैं।
दीपावली के एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने ही खुद आकर के ₹7 in diesel, ₹7 in petrol कम करवाए ना। सो जनता के मांग सुन करके प्रधानमंत्री जी उस समय पर सामने आकर के ही कटके, और ग्लोबली प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस के वजह से जो हो रही है, और प्राइस सिर्फ ज्यादा होना एक प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है, चैलेंज ये भी है कि शॉर्टफॉल भी है। सप्लाई उनसे जो उत्पादन होकर आना है उसमें भी कटौती हो रही है, सप्लाई भी कम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है।
यूक्रेन संकट के गहराने के साथ ही प्राकृतिक गैस की कीमत भी बढ़ रही है। इससे भारत में भी एलपीजी और सीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं। और अब बात भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक की, जहां इन दिनों सांप्रदायिक मुद्दे ज्यादा हावी हो रहे हैं। हिजाब विवाद से सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंची थी। अब बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद राज्य में तनाव पसरने लगा है। इस हत्या से राज्य के शिवमोगा इलाके में तनाव की स्थिति है। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाकर आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। भाजपा नेता और सांसद तेजस्वी सूर्या ने हत्या के लिए इस्लामिक कट्टरपंथियों को जिम्मेदार ठहराया है।
He lived for Hindutva and he died for Hindutva. Growing Islamic fundamentalism in Karnataka has unfortunately taken him victim. This is not the first time that we are witnessing these kind of murders in Karnataka. There is no dedicated agency that monitors the growing Islamic terror radicalization that is happening in Karnataka. Therefore, I request the Honorable Chief Minister to kindly establish and set up an exclusive agency under the State Intelligence Department, manned with the necessary resources, human power, human resources, financial strength, so that there will be an institutional mechanism in Karnataka which will respond and preempt.
कांग्रेस पार्टी ने इस हत्या की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। इस बीच पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे हिजाब विवाद का कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाया है। राज्य के गृह मंत्री ए ज्ञानेंद्र का कहना है कि जांच में हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। और अंत में थोड़ी चर्चा उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव की। यहां 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं, जिनमें से 3 चरण संपन्न हो चुका है और 4th चरण के तहत आज 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आज के चरण में रुहेलखंड से लेकर तराई बेल्ट और अवध के क्षेत्र में मतदान हो रहा है। अधिकतर सीटों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी कई सीटों पर मुकाबले को कड़ा बना रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने कोरोना के चलते रैलियों और रोड शो पर लगाए गए नियमों में थोड़ी ढील दी है। कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को राहत देते हुए रैलियों और रोड शो पर 50% की सीमा में ढील दी है। हालांकि चुनाव प्रचार से संबंधित अन्य मौजूदा प्रावधान में कोई तब्दीली नहीं की गई है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।